की तू पहचान कर ले कर्म की तू पहचान हे मानव कर ले तू पहचान।
ओम शांति। सभी एक साथ कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। तीन बार क्यों ओम शांति कहा? क्योंकि पहली बार जब कहते ओम शांति तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर दूसरी बार जब कहते ओम शांति माना मेरा पिता परमात्मा भी शांति का सागर है, और तीसरी बार जब कहते हैं ओम शांति तो मतलब मेरा धाम शांति का धाम है। ओम शांति 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 भी कहते हैं, तो मैं शांत स्वरूप, मेरा पिता शांति का सागर और मेरा धाम शांति का धाम। तो जिसका अपना स्वभाव ही शांति है, जिसका पिता शांति का सागर है, जिसका धाम शांति का धाम है, वो कभी अशांत हो सकता है? हो सकता है अशांत? अगर वो कहता है मैं अशांत हूँ तो ये कितना बड़ा ज्ञान है उसके अंदर। जैसे किसी के नाम पर बहुत बैंक बैलेंस है, बैंक में बहुत अकाउंट है, उसका पिता भी बहुत धनवान है, बहुत बड़े बड़े मकान है उसको, और वो कहे मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये कितना कितना बड़ा मूर्ख हुआ वो। तो आज हम सब कौन सी अज्ञानता व्यक्त करते हैं, अपने आप को भी भूले, अपने पिता परमात्मा को भी भूले और अपने धाम शांति धाम को भी भूल गए हैं, और इस संसार के भूल भुलैया में फंस गए हैं और फंसने के कारण दुखी हो गए हैं। अब जब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो हम उस बंधन से मुक्त होते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं, अपने अंदर झांकने लगते हैं, परमात्मा को पहचानने लगते हैं, अपने सच्चे धाम को याद करने लगते हैं, तो शांति तो हमारे पास ही अनुभव होती है, इसलिए हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने की जरूरत है। आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो सोई हुई है, उसे जगाना है, तो राजयोग के द्वारा उसी को हम जगाते हैं। जैसे कोई बलशाली व्यक्ति हो, बहुत ताकतवर हो, पर वो सोया हुआ है, तो उसकी शक्ति भी सोई हुई ही है, क्योंकि उसको पता नहीं, वो तो नींद में है, लेकिन जब वो जागता है तब उसको महसूस होता है अरे मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। अब वो बाहर की शक्ति, अब ये अंतर की शक्ति। हर आत्मा एक शक्ति है, लेकिन वो शक्ति सोई हुई है, क्योंकि हम खुद को ही नहीं पहचानते। इसलिए इस राजयोग के माध्यम से पहले आपको अपनी पहचान मिली, फिर परमात्मा की पहचान मिली, अपने धाम की पहचान मिली, और कैसे परमात्मा से संबंध जोड़कर वो शक्ति जो सोई हुई है उसको हम जगाएं, उसकी विधि बताई गई। अब इसका अभ्यास हमें करना है, लेकिन ये अभ्यास भी तब हम कर सकेंगे जब हम अपने मन में जो अशुद्धि है जो विकृतियां हैं, जो विकार है, उससे हम मुक्त हो सकेंगे। एक अंतर का शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसे जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं, हम कहते ये गलत है। आप वही हैं जो आप खाते हैं, वो तो आपका शरीर बनता है। जैसी खुराक होगी वैसा आपका शरीर होगा। या कोई कहते हैं कि आप वही हैं जो आप पहनते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर की ड्रेस पहनेगा तो पता चलेगा ये डॉक्टर है, ये वकील है, हाँ उसका अपना काला कोट होता है, ये वकील है ड्रेस अनुसार। लेकिन वास्तव में वो तो केवल ड्रेस पहन ले, डॉक्टर की, वकील की, कोई साधु की भी ड्रेस पहन ले, पर अंदर में उसमें चोरी है, डाका है, गंदे विचार हैं। तो बाहर वो कितनी भी कैसी भी ड्रेस पहन ले, वस्त्र पहन ले, लेकिन अंतर में तो शुद्धि नहीं है ना, तो उस प्रकार की भावना नहीं है। तो इसीलिए आप वास्तव में वो नहीं हैं जो आप पहनते हैं या खाते हैं, जो आप करते हैं। क्योंकि करना भी तो बहुत कुछ होता है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा अपनी कंपनी में, लेकिन घर में एक दिन सर्वेंट नहीं आया तो अपने घर की सफाई भी उसको करनी पड़ेगी। किचन में खाना पकाने वाली जो भी है वो नहीं आई, या पत्नी बीमार है तो खुद को ही खाना पकाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी हो गया कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर बदल गया, नहीं, कई कार्य करते हैं। एक एक्टर है, कितने रोल बजाता है। तो आप वही नहीं हैं जो आप करते हैं, पर आप वही हैं जो आप सोचते हैं। अब इस पर बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, क्योंकि सोच के आधार पर हमारी वाणी बनती है। वाणी ऐसे ही नहीं निकलती है, अवश्य मन में आपने ऐसे सोचा होगा, उसी अनुसार वाणी निकली। और जैसी आपकी वाणी होगी वैसे कर्म भी होंगे। कई लोग कहते हैं जो हम कहते हैं ना वो कभी हम करते नहीं हैं। अब वो व्यक्ति तो उस पर कौन विश्वास करेगा, केवल कहता रहता है पर करता नहीं है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही बोलता है, छोड़ो इसको। और कई ऐसे हैं जो करते हैं ना पर कहते नहीं हैं, वो तो बहुत खतरनाक होते हैं, वो पता ही नहीं क्या कर देंगे क्योंकि कहते नहीं हैं, पर सोचते ज़रूर हैं। तो बिना सोच के वाणी नहीं निकलती, बिना सोच के कर्म भी नहीं होता। पर सोच समझ कर अगर हम कर्म करें तो हमारे कर्म बहुत ऊंचे बन जाए। तो आज का जो विषय है, कर्मों की गुह्य गति। ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, हम कहते हैं इस कर्म क्षेत्र पर हम जैसा कर्म का बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। ये एक अनादि अविनाशी कानून है, लॉ है, एक ईश्वरीय कायदा है कि हो नहीं सकता कि बीज आप एक बो और फल आप दूसरा काटो। तो जैसा कर्म वैसा फल, ये कर्म की बहुत बड़ी गति है। लेकिन ये बड़ी गुह्य गति है, क्योंकि साधारण इंसान इस कर्म की गति को समझ नहीं सकता है। कई बार हम कर्म तो अच्छे करते हैं लेकिन फल अच्छा नहीं मिलता है। तो हम कहते हैं हमने कर्म तो बहुत अच्छा किया पर फल क्यों नहीं अच्छा मिला। अब इसमें गुह्य गति ये है कि कर्म तो हमने उस समय किया और हम अपेक्षा रखते हैं कि फल भी उसी समय मिले, लेकिन फल उसी समय तो मिलता नहीं है। ये जो बीज और फल के बीच में जो अंतराल हो जाता है, वो उसका हम धीरज नहीं रख पाते हैं। और कई बार मुख से हम कहते हैं ईश्वर के घर में तो अन्याय है, या तो अन्याय है, पर ये हम भूल जाते हैं कि ईश्वर के घर में देर जरूर है, क्योंकि फल तुरंत तो नहीं मिलता है। देर जरूर है, लेकिन क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं तो निष्कामी हूं, मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है। अब उसमें कोई इच्छा हो न हो ये उसकी अपनी बात, लेकिन कर्म की गति ये कहती है कि आपको फल जरूर मिलेगा, भले इच्छा हो या न हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो निष्कामी हो सकता है, भले कामना न भी रखता हो पर फल मिलेगा जरूर। इसीलिए कर्म की गति बड़ी गहन है, और परमात्मा ने, शिव पिता ने, ब्रह्मा पिता के द्वारा जो हमें कर्म की गति बताई है, उस अनुसार अगर हम चलें तो हमारा भाग्य बहुत उज्जवल हो सकता है, बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। क्योंकि हम अपने कर्म इतने ऊंचे बना देते हैं, जिन ऊंचे कर्मों का फल अवश्यंभावी श्रेष्ठ होता ही है। तो क्या है कर्म की गति, कैसे समझें इसको? क्योंकि कर्म की गति के बारे में बहुत प्रश्न उठते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है, मैं तो उसको सुख दे रहा हूँ फिर भी वो मुझे दुख दे रहा है। अब ये सब प्रश्नों का हल कर्म की गुह्य गति समझने से पता चलता है। तो कर्म की गति समझने से पहले हम ये जानेंगे कर्म क्या चीज है, कर्म की परिभाषा क्या है। जैसे योग की परिभाषा आपको बताई कि योग की परिभाषा है जोड़ना, योग माना जोड़, मिलन। युज शब्द से निकला है ये शब्द योग, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। वैसे कर्म शब्द भी संस्कृत का शब्द है, और अगर उसकी साधारण परिभाषा ले तो कर्म की साधारण परिभाषा है किसी भी प्रकार का कार्य, कोई भी क्रिया। व्याकरण में, ग्रामर में हम क्रियाएं पढ़ते हैं, वर्ब, इंग्लिश में उसे वर्ब कहते हैं, देखना, सुनना, बोलना, करना, हंसना, रोना, चलना, फिरना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं। तो किसी भी क्रिया को, वर्ब को अगर हम लिटरली लें तो वो कर्म है। लेकिन अगर हम उसको गहराई से सोचें तो कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म की बहुत बड़ी गहराई है। तो साधारणतः कोई भी कार्य है, क्रिया है, कृति है, इनको हम कर्म कहते हैं। परंतु अगर हम इसका व्यापक अर्थ लें तो इसका व्यापक अर्थ है कि कोई भी कार्य और उसका फिर परिणाम, ये दोनों कर्म के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही कर्म की परिभाषा में आते हैं, केवल वो क्रिया ही नहीं, लेकिन क्रिया के साथ प्रतिक्रिया। वो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही कर्म शब्द की परिभाषा में आएंगे। हम क्या समझते हैं कि केवल जो मैंने किया वही कर्म है, और जो प्रतिक्रिया हुई उसको हम कर्म के साथ नहीं जोड़ते हैं। लेकिन कर्म के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया, कर्म और उसका फल, दोनों ही जोड़ना होगा। और उसके लिए न्यूटन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होकर गए हैं, जिसको फादर ऑफ साइंस कहते हैं। उसने बहुत बड़ी परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? न्यूटन का गति का तीसरा सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें उसने बताया कि आपकी जैसी क्रिया होगी उसकी समान और बराबर प्रतिक्रिया होती है। समान भी होगी और बराबर भी होगी। कई गेंद रखे हैं, बॉल्स रखे हैं, और एक बॉल हमने लिया और उस जोर से दूसरे बॉल्स पर फेंका, उसको फोर्स से हमने उन पर डाला। अब जिस फोर्स से हम वो बॉल फेंकेंगे और दूसरे बॉल्स को लगेगा, वो धीरे धीरे उतनी ही शक्ति चारों ओर फैलेगी, और जो अंतिम बॉल होगा वो उतनी ही शक्ति से जाएगा और फिर वापस आएगा। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, वापस आएगा। तो जो आपने किया उसका आपको वापस रिटर्न मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत का बहुत बड़ा गुह्य राज भी है। तो जैसे प्रकृति में हम ये देखते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिकता में भी हमें यही समझना होगा। तो क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत को समझना माना कर्म अर्थात कारण और परिणाम का सिद्धांत। ये दोनों बातें कर्म में आती है, वो कारण क्या हुआ जो हमने कुछ किया और उसका परिणाम क्या मिला। तो कारण और परिणाम का सिद्धांत, द कंसेप्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इसी को ही कर्म कहा जाता है। अब ये बात जब हम जानते हैं तो दूसरे शब्दों में कर्म की गति को हम ये मानेंगे कि जो हम दूसरे को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम दूसरे को सुख देते हैं तो सुख हमको लौट कर मिलेगा, अगर दुख देते हैं तो दुख लौट कर मिलेगा। अर्थात हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अब हम अपने लिए क्या चाहते हैं, अगर ये हमको स्पष्ट है तो हमको यही दूसरों को भी देना है। अगर हम अपने लिए सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख दो। ये हो नहीं सकता कि आप किसी को दुख दो और वो आपको सुख दे, नहीं। ये साधारण बात है कर्म को समझना। सुख चाहते हैं तो सुख दो, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को देते हैं। पर कर्म सिद्धांत को अगर हम हर धर्म की परिभाषा में लें, सभी धर्मों ने यही कहा, जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, जैसा बीज वैसा फल, एज यू सो सो शैल यू रीप। ये कर्म सिद्धांत का बहुत बड़ा एक सिद्धांत है। अब इसको समझना भी मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत हमें शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा यही लेनी है कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हो। हम ये कभी नहीं कहें ये मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है, जरूर हमने भी उनके लिए दुख का बीज डाला होगा। इसीलिए दूसरे को दोषी मत बनाएं। जो मुझे रिएक्शन में मिल रहा है इसका दोषी दूसरा नहीं है पर मैं स्वयं हूं। अब ये हम कैसे समझें? अगर ये समझ लिया तो ये कर्मों की गति को समझना होगा, और उसके लिए हमारे कर्म ही कारण है जो सही समय पर कर्म फल के रूप में सामने आते हैं। जो कुछ हमें मिलता है ये उसका दोष नहीं है, लेकिन हमारे ही कर्मों का फल है जो हमें वापस मिलता है। इसीलिए यह कर्म का शाश्वत एवं अटल सिद्धांत है। नो बडी कैन डिनाई दिस कि हमको वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। ये हो नहीं सकता कि हम दे कुछ और मिले कुछ और, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए कर्म सिद्धांत को समझना माना बीज और फल को समझना। लेकिन बीज और फल के लिए भी तीन सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत है जैसा बीज वैसा फल, ये है एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है एक बीज फल अनेक। जरूरी नहीं है कि बीज एक डाला तो फल भी आपको एक ही मिलेगा, अनेक फल मिलेंगे। और तीसरा सिद्धांत है कि बीज तो आपने एक समय पर बोया पर फल तुरंत नहीं मिला, कितने महीनों के बाद फल मिलता है। इसीलिए बीज बोने और फल पाने का समय अलग अलग है, उसी वक्त नहीं है। अब ये तीन सिद्धांतों को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएं तो कर्म की गति को समझना मुश्किल नहीं होगा, और जो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो पहली बात, जैसा बीज वैसा फल, उसके लिए समझना बड़ी चीज नहीं है। आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल मिलेगा, ये तो नहीं अपेक्षा करेंगे कि बीज तो मैंने आम का बोया लेकिन अनार मिलना चाहिए इस पेड़ में, ये तो नहीं होगा। अनार का बीज डालेंगे तो अनार मिलेगा, और बबूल बोएंगे तो बबूल ही काटेंगे, कांटों का बीज डालेंगे तो कांटों का ही पेड़ निकलेगा, ये तो नहीं सोचेंगे कि कांटों का बीज डाला है तो फूलों का फल मिले या रिटर्न मिले। इसी प्रकार सुख देंगे तो सुख मिलेगा, अथवा दुख देंगे तो दुख मिलेगा। ये बात बहुत सहज है समझना, ये कहावत भी है, लेकिन इसके आगे जो बात है कि बीज एक फल अनेक, अब इसको हमें समझना होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैंने किसी को एक गाली दी और वो रिटर्न में एक ही गाली देगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसको एक गाली दी, उसने 10 गाली दी, अब उसने 10 गाली दी, मैंने 100 गाली दी, मैंने 100 दी, उसने 1000 दी, ऐसे भी हो सकता है ना। हम देखते हैं ना आजकल क्या परिणाम, किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा, एक कहा तो उसका रिटर्न क्या मिला, 2 मिला, कई बार 1 का 4 भी मिलता, 8 भी मिलता, 100 भी मिलता है। जैसे आप कई बार कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसे भी होता है, वो बेचारा शांति रहता है, हमने तो उसको गाली दी पर उसने कुछ नहीं कहा। अब इसमें कई बातों का मिश्रण है, कई बातें हैं, क्योंकि उसका जैसा संस्कार होगा दूसरे का उसी अनुसार वो रूप रहेगा। उसको अंदर में शांत रहने का संस्कार है तो चलो बॉस की गाली सुनी भी, जो भी सुना, पर बेचारा बोलेगा कुछ नहीं, शांत रहेगा। तो जिस प्रकार तो सामने वाला कैसे है उसी अनुसार भी रिटर्न मिलता है। हम एक खुले मैदान में खड़े हैं जहाँ न कोई पेड़ है, न कोई मकान है, बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान है एकदम खाली, और हम जोर से आवाज करते हैं तो क्या होगा, हमको रिटर्न में कुछ भी आवाज नहीं आएगा, मेरी आवाज भी मुझे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इतना खुला है तो मैं अपनी आवाज भी नहीं सुन सकूंगी, क्योंकि वो चला गया, उड़ गया हवा में, तो मेरी आवाज उड़ गई। लेकिन वही आवाज अगर हम एक गुंबद में बोलते हैं तो कितनी बार वो एको होकर के हमको सुनाई देता है। बीजापुर का गोल गुंबद है बीजापुर में, तो उसमें एक सुई एक घड़ी हम अपनी वॉच दीवार के किनारे हम लगाते हैं दीवार से, तो दूसरी तरफ उस घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। अब सोचिए कहाँ ये इसकी आवाज़ दूसरे साइड में सुनाई देती है, क्योंकि अनेक बार वो आवाज़ एको होती रहती है। तो इसीलिए जानबूझ के गोल गुंबद में बीजापुर में जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं उसके अंदर, तो वो आवाज़ एकोइंग होती है। तो स्थान समय व्यक्ति, परिस्थिति, इन सब बातों पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। जैसा बीज वैसा फल। जिस सीजन के समय आपने बीज बोया तो फल भी मिलेगा, सीजन के बिना बोया तो कहाँ फल मिलेगा, तो उसका भी अपना असर होता है। तो बीज एक और फल अनेक, क्योंकि एकोई होकर मिला। तो फूल का एक बीज बोने से कई फूल निकलते हैं, और गेहूं का एक दाना बोने से कितनी गेहूं निकलती है, जमीन तो दाता है। अब इसी प्रकार हम अपने अंदर में भी देखें, हम एक मन में सोच लाते हैं परंतु उसको वाणी में नहीं कहा, पर तुरंत उसका रिटर्न मिल जाएगा। और क्या रिटर्न तुरंत मिल जाएगा? गलत बुरा सोच होगा तो तुरंत मेरा मन मैला हो जाएगा। अच्छी सोच होगी तो उसी समय खुशी होगी। अब वाणी से निकला तो अच्छी बात होगी तो उसका भी रिटर्न मिलेगा, कर्म से हुआ तो उसका भी रिटर्न मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन अंतराल में क्या फर्क होगा कि किसके साथ हुआ? जैसे देखिए, हम एक अंगुली उठाते हैं। अब ये अंगुली मैंने उठाई हवा में, और हवा में लकीर खींची, तो लकीर हवा में खींची तो पता भी नहीं चलेगा कि लकीर खींची भी है, पर खींच तो गई ना लकीर, पर दिखाई नहीं देगी। पर यही अंगुली उठा के हमने पानी पर खींची, पानी पर लकीर खींची, तो कुछ क्षण के लिए वो लकीर दिखाई दी, फिर मिट जाएगी। रिएक्शन होगा, परिणाम होगा, लेकिन कुछ देर के लिए, एक सेकेंड। अब यही अंगुली उठा करके मैंने रेत पर खींची लकीर अंगुली से, तो रेत पर खींचने से वो लकीर दिखाई देगी कुछ समय के लिए, फिर हवा लगी या पैर उस पर आया तो वो लकीर मिट जाएगी, पता नहीं चलेगा। पर यही हाथ लेकर मैंने एक नुकीली चीज, पॉइंटेड चीज लेकर के हमने एक पत्थर पर खींची उतनी शक्ति के साथ, तो वो पत्थर पर लकीर तो सालों के साल दिखाई देगी, चलती रहेगी चलती रहेगी। अब कर्म भी ऐसे ही है। क्या मैंने कर्म किया, किस समय किया, किस स्थिति में किया, किसके प्रति किया, उसकी प्रतिक्रिया उसी अनुसार मिलेगी। कई ऐसे कर्म हैं जो सात जन्म तक भी उसका फल मिलता रहेगा, परिणाम मिलता रहेगा। कई ऐसे बीज हैं, एक बार बोया पर जब फल निकलना शुरू होता है तो मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। कई एनुअल प्लांट्स होते हैं, साल में एक बार मिला, थोड़ा समय मिला, सीजन में मिला, कोई सीजन में दो बार मिला, कई फिर बीज दोबारा डालो तब मिले। ये सब जैसे बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं, ये कर्मों की गुह्य गति भी इसी प्रकार बीज और फल का एक सिद्धांत है, उसकी एक बहुत बड़ी स्टडी है। तो इसीलिए बीज एक और फल अनेक, पर बीज बोने और फल पाने का समय अलग अलग है। इसलिए ये याद रखें कि हमारे कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। हम कितना भी छिपाने की कोशिश करें, हम कितना भी भागने की कोशिश करें, कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, वो फल हमारा पीछा करेगा, जरूर पीछा करेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो आगे जन्मों में भी पीछा करेगा, इतने हद तक ये कर्म का फल जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है, ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कैसे समझें? अब बीज जो मैंने डाला और फल निकलता है, उसके बीच में भी बहुत अंतराल है। बीज मैंने डाला मान लो, पर वो बीज धरनी में जो डाला उस पर हल चला हुआ नहीं है, तो क्या होगा? बीज कैसे मिलेगा? वो तो सूख जाएगा, या धरती बंजर है तो भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कई बार जब हम दान करते हैं तो कहा जाता है, दान जब करो तो पात्र को देख करके करो। अगर पात्र योग्य नहीं है तो वो दान फल नहीं देगा। जमीन अगर बंजर है और उसमें हमने बीज डाल दिया तो फल नहीं मिलेगा। हम अपेक्षा करें कि बीज से फल निकले, नहीं होगा। इसीलिए धरनी पर पहले हल चलाना होता है। जिस पात्र को हम देते हैं वो योग्य होना चाहिए, वो धरनी ठीक होनी चाहिए, उसके लिए वो आवश्यक है, ये होना चाहिए। फिर हम बीज बोलते हैं। फिर बीज को सींचना भी पड़ता है। केवल बीज डालना उतना ही पर्याप्त नहीं है, जल से सींचना भी पड़ता है। उसके प्रति, उस बीज के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, ये भी रखनी पड़ती है। ऐसे नहीं किया और खत्म, नहीं। उसको कंटिन्यूस पानी भी देना है, उसके प्रति वो भावना सदा बनी रहे। और फिर जब नई नई पत्ते आते हैं तो उसकी रक्षा भी करनी होती है। कोई भी विकृति उस बीज और फल के बीच में ना आए। फिर कुछ नेगेटिव विचार मन में आया, वो फल उतना नहीं मिलेगा। कीड़े मकोड़े लग गए, कीड़े लग गए, जीव जंतु लग गए, वो फल नहीं मिलेगा। तो ये विकृतियां वो कीड़े हैं जो फल को देने में विघ्न डालते हैं। फिर उसके बाद जब फल पकने देना है उसको पेड़ पर, धीरज का फल मीठा होता है। देर पके सो मीठा होए। जितना हम फल को पेड़ पर पकने देंगे उतना वो मीठा बनेगा। कई कच्चा ही तोड़ देते हैं, फिर कच्चा तो कड़वा होगा। तुरंत फल की चाहना रखते हैं तो समझते हैं मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, मेरी महिमा हो, मैंने इतना किया, मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं, पानी तक भी नहीं पूछा कि आपने इतनी मेहनत की, पानी तो पियो, वो भी नहीं पूछा, अभी मैं आगे से नहीं करूँगा। परंतु अगर ये सोच लिया, इसका मतलब फल पकने नहीं दिया आपने, कच्चा ही खाने की कोशिश की। अब कच्चा खाएंगे तो कड़वा लगेगा, कड़क लगेगा, मीठा तो नहीं होगा। वो खाने योग्य भी नहीं था तो भी हमने खाने की कोशिश की तो व्यर्थ जाएगा। और जब पक जाए फल तो खाओ और खिलाओ। खाओ और खिलाओ माना कि ये जो मेरा वर्तमान स्वरूप है ये किसी कर्म का फल है। आज अगर मेरा शरीर स्वस्थ है, इस उम्र में भी स्वस्थ है, क्योंकि छोटी उम्र में लोगों के शरीर स्वस्थ नहीं होते, और कोई इतनी बड़ी आयु में भी स्वस्थ रहे, ये बड़ा भाग्य है उनका। जरूर अच्छे कर्म किए हैं इसलिए इस आयु में भी स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये फल है। तो अगर तन हमारा स्वस्थ है, मन शक्तिशाली है, धन की कोई कमी नहीं है, ये भाग्य है। तो ये वर्तमान हमारे पूर्व के आधार पर निश्चित हुआ है। ये वर्तमान ऐसे ही नहीं आया है, जो हमने पूर्व में किया है उसका ये परिणाम है। बचपन से ही हमने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखा है, अपने विचारों पर ध्यान रखा है, अपने कर्मों पर ध्यान रखा है, तो इस उम्र में भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो भी वर्तमान है ये पास्ट का, पूर्व का या भूतकाल का परिणाम है। पर अगर अभी मैंने ध्यान नहीं रखा, अभी निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, तो फिर थोड़े साल के बाद तो कहाँ स्वास्थ्य रहेगा, बिगड़ जाएगा। तो मेरा वर्तमान भूत के आधार पर है और ये वर्तमान भविष्य बनाएगा। तो हर वक्त हमको अपने बीज को बोते रहना है आगे के लिए। कई लोग समझते हैं कि भूत जो बीत गया वो तो हिस्ट्री थी, उसको भूल जाओ। भूलो नहीं, उनसे शिक्षा लो। चलो जो हो गया सो हो गया, उसको अभी सोचने से क्या होगा, वापस तो आएगा नहीं। उसे शिक्षा ले लो ताकि आगे वो भूल ना करे। और भविष्य जो आने वाला है वो पता नहीं है, वो एक मिस्ट्री है, लेकिन वो वर्तमान के आधार पर ही होगा, ये हम ना भूले। इसलिए वर्तमान को हमें श्रेष्ठ बनाना है, तब हम जो पास्ट में जो भूले हुई उनको भी खत्म कर सकेंगे और भविष्य को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, भूत के आधार पर हम पिछला भी रोते रहते, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, और वर्तमान को बिगाड़ते रहते। जो हमें इस समय गिफ्ट मिली है, एक सौगात मिली है वर्तमान की, उसमें तो हम ठीक करें अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपनी सोच को। तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। इस क्योंकि पास्ट का वर्तमान पर असर है, वर्तमान का भविष्य पर असर होगा। इसीलिए अभी जो फल अच्छा है ये केवल खुद मत खाओ। अगर तन स्वस्थ है तो खुद तक मत रहो, इस स्वस्थ तन से दूसरों की सेवा करो। जितना आप दूसरों की सेवा करेंगे ये बीज डालेंगे, और उस जो सेवा करेंगे उनकी जो दुआएं मिलेगी, ये दुआएं आपको शक्ति देगी जो आगे भी आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। अगर आपका मन अच्छा है, दिमाग अच्छा है, सोच आपकी अच्छी है, ये बांटो दूसरों को, ज्ञान वर्षा करो। अपने तक ही मत रहो, नहीं तो अपने तक ही रखा तो ये सड़ जाएगा। बांटो, उसको बहने दो। और अगर धन भी है उसको भी तिजोरियों में रख दिया, वो धन तो कोई काम का नहीं है। वो धन भी एक दिन चोर लूट जाएंगे, सरकार खा लेगी, या हाँ रिश्तेदार ले लेंगे, और आप ऐसे ही हाथ मलते बैठ जाएंगे क्योंकि आपने उसको सफल नहीं किया। या मान लो हम मर गए, हमारे बच्चों को मिला, वो बच्चे क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं, हमने तो कंजूसी की, किसी को सुख दिया ही नहीं उस धन से, और बच्चों को चलो मिला, वो बच्चे तो खा पी करके उड़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जो है उसका सुख दो दूसरों को, तो उनसे जो दुआएं मिलेगी, तो अगर आपने शरीर छोड़ा भी तो जितना आपने दान किया है उसका भाग्य आप अपने साथ ले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते, कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, 80 साल का बूढ़ा था, 80 साल की उम्र थी उसकी। तो किसी ने उनसे, और बड़ा बिजनेसमैन था, उनके 4 बच्चे थे, बहुत बिजनेस सबको बांट, सबको दी थी, और सब अच्छे बिजनेस में थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो उसने कहा मेरी उम्र तो केवल 20 साल है। तो क्या 20 साल, ये तो बहुत बूढ़ा आदमी है, और कहता मैं 20 साल का हूँ, 20 साल का थोड़ी है, तो झूठ बोल रहा है। उसने कहा नहीं मेरी उम्र 20 साल है। फिर आगे प्रश्न किया कि आपके बच्चे कितने हैं, तो कहा मेरा एक ही बच्चा है, जबकि उसको 4 बेटे थे और सब बड़ी बड़ी बिजनेस में थे। तो कहा मेरा एक ही बेटा है, तो कहा ये दूसरा झूठ बोल रहा है। पर वो कहे नहीं यही सच है। फिर तीसरा पूछा कि आपके पास संपत्ति कितनी होगी, तो कहा जितनी संपत्ति मैंने दान की है, कुछ लाख जो दान किया है वही मेरी सच्ची, वही मेरी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, इतना ही कहा मेरी इतनी संपत्ति, क्योंकि वो दान की हुई थी, वो तो उनके पास सब था। तो जिसने ये प्रश्न किया उसको लगा कि जरूर कोई राज होगा, तो प्रश्न किया उस व्यक्ति से, आप ऐसे जो कह रहे हो इसमें क्या राज है। तो कहा देखो 7 वर्ष की उम्र तक तो मैंने बहुत ऐश किया, बहुत धन कमाया, पाप का कर्म किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेकिन 7 साल की उम्र के बाद मुझे होश आया कि ये तो मैं सब गलत कर रहा हूँ। तो मेरा जीवन बदल गया और मैंने अपने आप को बहुत सुधारा, और उसके बाद मैं समझता हूँ मेरा सच्चा जीवन केवल ये 20 साल है। अभी उम्र 80 साल है लेकिन मेरा सच्चा जीवन ये 20 साल है। फिर कहा कि आपके बच्चे, तो कहा वैसे तो 4 बेटे हैं लेकिन एक बेटे के साथ ही मेरा संबंध है, 3 बेटों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, वो सब अलग अलग हो गए, न वो मेरे से मिलते हैं, न फोन करते हैं, न पत्र लिखते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो कोई कर्मों का हिसाब किताब था, वो पूरा हो गया, इसीलिए मैं मानता ही नहीं कि वो बेटे हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। पर एक बेटा मेरे साथ है, साथ में है, तो इसीलिए इसी को मैं बेटा मानता हूँ, बस यही है। बाकी सब कर्मों का हिसाब किताब है, जो माँ बनी, बाप बना, बेटा बना, जो भी संबंध हमको मिले, और कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं। फिर कहा आपकी संपत्ति, तो कहा कि जितनी मैंने दान की है वही मेरी संपत्ति, जो मैंने अपने हाथ से दान की है वही मेरी सच्ची संपत्ति है, क्योंकि वही आत्मा के साथ जाएगी। बाकी तो करोड़ों होंगे, सब बच्चों का मिला करके तो बहुत होगा, पर इतनी संपत्ति मेरी है जो मैंने अपने हाथ से दान की है। अब आप बताइए कि वास्तव में फल जो हमें मिला है वो खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। तन मन धन से औरों की सेवा करो तो ये पुण्य आपका बढ़ता जाएगा, दुआएं मिलती जाएगी, आपका ये जन्म भी सफल होगा और जन्म जन्म सफल होगा। पर उसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। क्या करना होगा? हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। मेरे विचार कैसे चलते हैं, उत्पन्न होते, क्या मेरी सोच है, फिर क्योंकि उसके आधार पर हमारी वृत्ति बनेगी, एटीट्यूड बनेगा, उसी आधार पर हमारी भावनाएं बनेगी, भावना के आधार पर वाणी होगी, वाणी के आधार पर कर्म होंगे, वही आदतें बनेगी और वही आदतें हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी तैयार करेगी और उसी के आधार पर हमारा भाग्य निर्धारित होना है। तो इट इज नॉट सो सिंपल कि कर्म किया और भाग्य हुआ। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी वाणी, ये सब कैसा है, इसके आधार पर हमारा फल निश्चित होगा, वो भाग्य निश्चित होगा। इसीलिए बहुत सुंदर कहावत है, अपने विचारों पर ध्यान दे, आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि यही आपके शब्द बन जाएंगे। जो आप शब्द नहीं बोलना चाहते हो वो सोचो भी नहीं पहले। मान लीजिए आप ये सोचते ये मर जाए, पर मुख से नहीं बोलते हैं। अब ये सोच तो मन में चलता है, ये मर जाए, ये मर जाए, मर जाए, एक दिन मुख से भी शब्द निकल आएगा, मर जाए, क्योंकि बिना सोच के तो शब्द नहीं आया। एक छोटा सा मैं आपको मिसाल देती हूँ। हाँ, कई बार मुख से भी हम बोलते हैं, हम चाहते नहीं हैं, पर गुस्से में आके बोल देते हैं, और गुस्से में आकर के बोल दिया तो उसका परिणाम तो बुरा निकलेगा ही। एक बहुत इसके ऊपर मिसाल हम दे सकते हैं, लेकिन एक मिसाल केवल मैं आपको दूंगी। मान ली एक माता पिता थे, ये सच्ची घटना है, माता पिता थे, तो अब एक ही बेटा था तो बहुत उनके ऊपर लुटाते थे, बड़ा लाडला बेटा, लेकिन वो लाडला बेटा संग के रंग में आकर के शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, ये सब लेने लगा। माँ बाप ने शुरू में तो उनको कुछ भी नहीं कहा, वो धन मांगता था, देते रहते थे। धीरे धीरे जब उसका सारे व्यसन बढ़ते गए, अब माँ बाप ने थोड़ा अंकुश लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अब जिसको आदत पड़ गई तो वो कहाँ छोड़ सकेगा। फिर चोरी भी करने लगा, झूठ भी बोलने लगा, फिर और अंकुश किया और कंट्रोल किया तो और भी वो करने लगा। एक दिन वो बहुत लेट घर में आया, रात के 2 बजे, ये रियल घटना है। माँ बाप इंतजार कर रहे थे, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, और अंदर में आग बबूला हो रहा, गुस्सा इतना भरता, जैसे जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, तो प्रेशर कुकर का अगर वो सीटी दब जाए और वो चालू ना हो, वो प्रेशर रिलीज न करेंगे तो एक समय ऐसा वो वाल्व ही फट जाएगा और सारा जो कुछ खाना अंदर पड़ा हुआ है, चावल या जो कुछ, वो सारा सीलिंग को लग जाएगा, क्योंकि फट जाएगा, प्रेशर रिलीज तो होगा ही ना। अब वो अंदर ही अंदर गुस्सा, अंदर ही अंदर नफरत, ये सारा मन में आया। और जिस समय बच्चा आया घर में, रात को 2 बजे आया, तो माँ ने उसको कह दिया, जा मर जा, जा मर जा, इतना गुस्से में कहा। और बाप ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ। माँ ने कहा, मर जाओ। अब वो चुपचाप अपने घर में गया, अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद करके अंदर चलाया। अब वही उसके दिमाग में घूम रहा है, निकल जाओ मर जाओ, निकल जाओ मर जाओ, निकल जाओ मर जाओ, बस वही सोच रहा। अभी पिया हुआ तो था ही, अंदर में कमज़ोर तो था ही, बस उसने कहा, ठीक है मैं मर जाता हूँ, माँ की आज्ञा मानता हूँ और पिता की भी आज्ञा मानता हूँ कि कल उनको मुझे मेरी अर्थी को निकालना होगा। तो उनके पास कुछ पता नहीं पॉइजन था, क्या था, रात को पी लिया, पत्र लिख दिया कि मम्मी आपकी इच्छा थी ना मैं मर जाऊं, तो मैं आपकी इच्छा अनुसार कर रहा हूं। पिताजी आपकी इच्छा थी ना घर से मैं निकल जाऊं, तो आपको मुझे निकालना होगा कल, और मैं जा रहा हूँ आपकी इच्छा अनुसार। अब कल सुबह जब देखा तो दरवाजा बंद, ठकठकाया आवाज, कोई खोले नहीं, और जब दरवाजा तोड़ा तो देखा तो अंदर डेड पड़ा है, लटक पड़ा है, और एक चिट्ठी उसके सामने, पिताजी माताजी आपके कहने अनुसार मैंने किया। अब ये क्या कहेंगे? अंदर में वो आग थी और वो मुख से निकल गए। जो आप नहीं चाहते हो वो मुख से कभी नहीं कहो, और जो आप नहीं चाहते हो वो मन में सोचो भी नहीं, सोचेंगे तो मुख से निकलेगा। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दें, वो आपके शब्द बन जाएंगे, और शब्द एक बार मुख से निकले, ये होंठ जो है ना, लिप्स, ये कमान की तरह है, तीर और कमान होता है ना, तो ये शब्द तीर की तरह है, ये एक बार मुख से निकले फिर यू कैन नॉट कंट्रोल देम, दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। जब तक वो मुख से निकला नहीं है तब तक आपके कंट्रोल में है, पर अगर आप उसके ऊपर वही सोच रही हैं तो एक दिन कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, मुख से निकल आएगा। और फिर अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो एक दिन आपके कर्म बन जाएंगे। इसलिए जो आप नहीं करना चाहते हो वो बोलो भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, हम ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उसी का ही वो इम्प्रिंट पड़ता है। और जो हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि आदतें बन जाएगी, कोई सोचे मैं तो कभी कभी करता हूँ, लेकिन एक दो बार भी की आदत बन सकती है। कोई सिगरेट पीता है, एक ही बार सिगरेट पी, पर जिसने उसको देखा वो तो ये सोचेगा ये तो सिगरेट पीता है, भले वो एक ही बार पिया सिगरेट, पर एक बार किया फिर अगले दिन फिर करेंगे, नेक्स्ट डे फिर करेंगे, फिर आदत पे मजबूर हो जाते हैं। जो आदत बन गई वो फिर आपकी आदतों पर अगर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, इट विल बिकम योर पर्सनैलिटी। सो वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स फॉर दे बिकम एक्शंस, वॉच योर एक्शंस फॉर दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स फॉर दे बिकम योर पर्सनैलिटी, एंड वॉच योर पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दो, क्योंकि वही आपका भाग्य निर्धारित करेगा, वर्तमान का भी और आगे के जन्मों का भी। क्यों? हाँ, इस पर जैसे मिसाल आता है ना कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया, और एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए जाएगा, ये आप समझ लो। तो जन्म जन्म के, क्योंकि वही संस्कार आत्मा ले जाएगी अपने साथ, वही भाग्य आगे जाएगा। तो इसीलिए सोच वो मुख्य बीज है हर कर्म के लिए। अब अपने कर्मों के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। कई फिर क्या कहते, इसने ऐसे किया ना इसलिए मैंने ऐसे किया, इसने ऐसे कहा ना इसलिए मैंने ऐसे कहा, अब दोष दूसरे पर दे देते, उसने किया इसलिए किया मैंने, अब उसने कुछ भी किया वो उसका कर्म, आपने क्यों किया, किसने मुझे गाली दी मैंने उसको थप्पड़ मारी, थप्पड़ मारा उसको, अब मुझे कहा जाएगा तुमने थप्पड़ क्यों मारा और गाली क्यों दी, अच्छा गाली दी ना, थप्पड़ तो उसे और एक्स्ट्रा हो गया, थप्पड़ मारना ज्यादा, गाली तो कहाँ लगी, वो तो हवा में उड़ गई। अब उसने मैंने थप्पड़ मारा तो उसने मुझे धक्का दिया, मैं गिर पड़ा, फिर मैंने बंदूक उठाई और उसको उड़ा दिया, मान लो मार डाला। अब कहाँ से शुरू हुआ, खाली एक गाली से, और इतने तक पहुँच गया जो बंदूक उठा के मैंने मार डाला। अब इसकी सजा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी, और मैं अगर कोर्ट में कहूँ इसने मुझे गाली दी ना इसीलिए मैंने किया, अरे गाली दी तो क्या हुआ, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया तो सजा तो क्या आपको ही मिलेगी, वो तो उसने जो कर्म किया वो जाने, उसका कर्म उसके साथ है, पर मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे देखना है, क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ होगा। इसलिए कर्मों का फल भोगने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है, जो मैंने किया है, हम उसको दोष नहीं दे सकते, वो कर्म तो मैंने किए, मेरे हाथ है। मैं अपनी इंद्रियों को भी दोष नहीं दे सकती हूँ कि ये हाथ पता नहीं क्यों उठा, क्यों थप्पड़ मार दी, मुझे मारनी तो नहीं थी पर पता नहीं ये हाथ कैसे उठा और थप्पड़ मार दिया, अब थप्पड़ ऐसे मार दी, हाथ ऐसे उठ गया, आपके सोच में तो था ना, जरूर मन में था, अपने आप तो नहीं उठेगा, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया, शब्दों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो इसीलिए हम दोष दूसरे को कभी नहीं दे सकते हैं, अगर दोष देते ये भी अज्ञान है। इसलिए कर्मों पर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, कर्म ही हमारी सच्ची पूंजी है। ये धन संपत्ति, ये जो कुछ भी है, ये कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है, पर जो मैंने कर्म किए वो ही मेरी सच्ची पूंजी बनेगी, यही मेरी सच्ची संपत्ति है जो मुझ आत्मा के साथ चलेगी, और कर्म के फल से मैं कभी बच नहीं सकता हूँ। ये एक ऐसा अटल सत्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। तो फिर हम क्या करें, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्म सिर्फ करना ही नहीं चाहते हैं, कहते बस कर्म ही नहीं करना है, कर्म सन्यासी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्म सन्यासी कभी नहीं बन सकते हैं, बस कर्म से सिर्फ शिक्षा ले लो। अभी क्या शिक्षा लेनी है, कई लोग कर्म से बहुत डरते हैं, पर और क्या समझते हैं, कर्म फल वो अच्छा या बुरा परिणाम है जो आपके अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर प्राप्त हुआ, न्याय आपके कर्मों के आधार पर होता है, इसीलिए उस कर्म से डरते हैं। वो कर्म जो है वो कर्म का फल परछाई की तरह उसका पीछा पीछा करता है, इसीलिए वो डरते हैं बहुत, क्योंकि कर्म तो किया है ना, अंदर में मन खाता तो है ना, और जब मन खाता है तो जरूर भय लगता है, इसलिए कर्म से ही डरते हैं। हम कहते कर्म से डरो मत, लेकिन कर्म से शिक्षा कर लो, किस प्रकार की, कर्म से प्रेम करो। प्रेम कैसे करेंगे कर्म से, कर्म फल एक उपहार समझो, एक गिफ्ट है आपके लिए, ये गिफ्ट आपकी आत्मा की उन्नति के लिए शिक्षा देता है, और वो तब तक शिक्षा देता रहेगा जब तक आप उससे सीख नहीं लेते हैं। हमें शिक्षा ये लेनी है कि आगे फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करना, चलो कर लिया, शिक्षा ले ली, पर आगे न करें। कई बार हम भगवान से भी माफी मांगते हैं, लेकिन माफी मांग करके फिर प्रतिज्ञा भी साथ साथ करनी चाहिए कि मैं ये भूल फिर नहीं करूंगा। हम भगवान से माफी तो मांग लेते हैं और समझते भगवान ने माफी दे दी, अब माफी दे दी नहीं दी है वो कैसे पता चलेगा। अच्छी बात है माफी मांगते हैं, पर साथ में प्रतिज्ञा भी तो करनी चाहिए कि ये नहीं करूंगा। एक बच्चा है, भूल करता है, मम्मी उसको डांटती है, बच्चा कहेगा मम्मी सॉरी, मम्मी कहेगी बोलो सॉरी, चलो सॉरी किया सॉरी किया, पर बार बार वही भूल करता है, बार बार सॉरी, तो सुधरेगा तो नहीं ना, सजा तो देगी ना माँ। तो परमात्मा कहते हैं जो आपका कर्म होगा उसका फल तो मिलेगा ही, भले माफी भी मांग ली, पर शिक्षा क्या ले लो उस कर्म से कि वो दोबारा फिर न करें, तब कहेंगे कर्म से आपका प्यार है। और वो प्यार जब कर्म से होगा तो हम दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जो हम उनसे चाहते हैं। तो दूसरे आपसे कैसा व्यवहार करते वो उनका कर्म है, आप उनसे कैसे कैसा व्यवहार करते हो ये आपका कर्म बन जाता है। तो हर एक अपनी चेकिंग करे, मैं कैसा हूँ वो कैसा है ये मत सोचो। कई बार बाबा हमें कहते हैं कि अपने तो जज बन जाते हैं, हाँ जज बन जाना माना जस्टिफाई करते हैं अपने गलत कर्म को, मैंने ये इसलिए किया, इसलिए ये हुआ, ये इसीलिए किया, कारण अपने कई बताते, जस्टिफाई करना, उसी को ठीक समझते हैं और दूसरों को दोषी सिद्ध करते हैं। लेकिन वास्तव में हम अपने जज नहीं बने, हम अपने वकील बना या जज बनना ये नहीं करें, बस अपने को सुधारे। दूसरों के हम जज भी बन जाते हैं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, अब वो कैसे भी करा, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद को तो देखते नहीं है, इसने क्यों गुस्सा किया, इसलिए मैंने गुस्सा किया, पर उसने गुस्सा किया उसके कर्म मैंने क्यों किया। इसीलिए कर्म पर हम कैसे ध्यान दें, इस कर्म की गहन गति की समझ हमें अपने जिम्मे जीवन की जिम्मेवारी लेने की शक्ति प्रदान करती है। हम दूसरों को दोष देने के बजाय हर परिस्थिति का सामना सहज कर लेते हैं जब कर्म की गति को समझ जाते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। कर्म का संन्यास तो कभी हो ही नहीं सकता है, सिर्फ कर्म को श्रेष्ठ बनाना है बस। अब यही चिंता हमें लगी रहनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, क्योंकि चार प्रकार के कर्म होते हैं और उसके लिए चार प्रकार की वृत्तियां होती है। अब इन वृत्तियों पर ध्यान देना होगा क्योंकि उसी अनुसार कर्मों पर हम ध्यान दे सकेंगे। एक प्रकार की वृत्ति वो है जिसमें मनुष्य सोचता मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। जो मेरा है उसमें तो मोह है, पर दूसरे की वस्तु में आंख है तो लोभ है। तो मोह भी है तो लोभ भी है, अपनी चीज तो नहीं देगा लेकिन दूसरे की चीज में भी आंख जाएगी। इसको हम कहते हैं दानवी वृत्ति। दानवी वृत्ति, दानव क्या कहेगा, राक्षस क्या कहेगा, मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा, तेरा तो मेरा मेरे हाथ न लगा। दूसरे की चीज जब्त करेगा और अपनी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देगा, ये दानवी वृत्ति। दूसरा है मानवी वृत्ति, साधारण मनुष्य, वो भी गॉड फियरिंग होता है। वो कहेगा ठीक है तुम्हारी चीज तुम्हारे पास, मेरी चीज मेरे पास, मुझे तुम्हारी चीज नहीं चाहिए पर अपनी नहीं दूंगा। वो दानव से फिर भी ठीक है, मानव, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। पर तीसरा है दैवी वृत्ति वाला। दैवी वृत्ति वाला क्या सोचेगा, मेरा सो हम सब का, हम सब का। कहानी सुनाते हैं ना कि एक बार असुरों ने भगवान से कहा, हे भगवान आप कितने पक्षपात करते हो, देवताओं को तो सब कुछ सुख देते हो और हमको नहीं देते हो, हम भी तो तुम्हारी रचना है, हमको भी उतना ही दो। तो भगवान ने कहा ठीक है आपको भी उतना ही देंगे। तो दानव और देव दोनों को भोज पर निमंत्रण दिया। तो भोज पर जब निमंत्रण दिया तो एक शर्त रखी और शर्त ये थी कि भोज खाओ लेकिन हाथ को ये इसको अपने मुंह पर नहीं रखना, ऐसे घुमाना नहीं है, सीधा ही रखना, लकड़ी बांध दी कि ये हाथ को मोड़ना नहीं है और जितना चाहिए खाओ। अब दानवों ने क्या किया, हाथ पर तो पट्टी बंधी हुई थी तो उन्होंने क्या किया कि जो चीज उन्होंने उठाई वो हवा में उड़ाई और खाने की कोशिश की, तो हाथ तो ऐसा था दूसरों को धक्का देते गए कि ताकि मेरे मुंह में जाए, तो न उसके मुंह में गया न किसी और के मुंह में गया, धरती पर गिरते गए और खुद भी एक दो पर गिरते गए, किसी को भी कुछ नहीं मिला। और जब देवों को कहा गया कि आपको हाथ को मोड़ना नहीं है और सब खाना है, तो उन्होंने सोचा कि हाथ को मोड़ तो सकते नहीं है, तो क्या किया, कैसे खाया, कैसे खाया, अगर मैं अपना मुंह नहीं हाथ नहीं मोड़ सकती हूँ आपके मुंह में तो डाल सकती हूँ। पर ये दानवों ने नहीं सोचा, पर देवों ने सोचा, क्योंकि मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, ये सब हम सब का है। यहाँ भी हम कहते हैं सब भगवान का है, आप सब भगवान के बच्चे हो, भगवान के घर में आए हो, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर का है। यहाँ कितना कार्य चलता है लेकिन हम सब कैसे इसको करते हैं, ये नहीं कि हम भाषण करते हैं तो हम बड़े हो गए और जो बर्तन मांजते हैं वो छोटे हो गए, नहीं, ये डिग्निटी ऑफ वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क केवल नहीं है, क्योंकि हर कार्य भगवान का है, हर कार्य ऊंचे से ऊंचा है। और ये देव वृत्ति से भी ऊंची वृत्ति है जिसको हम कहते हैं योगी की वृत्ति। योगी की वृत्ति क्या होगी, न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये सब उसका। अब उसका समझ करके चलो, क्योंकि न हम लाए हैं न ले जाएंगे, ये प्रकृति की देन है, प्रकृति को वापस करनी है, ये ईश्वर की रचना है, ये वापस करनी है, कुछ नहीं ले जाएंगे न लाए हैं, तो हम कैसे वापस करें। जो हमें मिला है उसका सदुपयोग करके उसको और अच्छा बना करके प्रकृति को दें, न कि जो मिला है उसका सर्वनाश करके या उसका होड़ करके हम उसको वहीं छोड़ के चले जाएं। तो क्या हम करना चाहते हैं, हम अपने आप से पूछें। अब इसी अनुसार चार प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म है पाप कर्म, दूसरा कर्म है पुण्य कर्म, तीसरा है श्रेष्ठ कर्म और चौथा है अकर्म। कर्म तो करना ही है, कर्म से हम छूट नहीं सकते, कर्म के बिना रह नहीं सकते। कर्म से ही हम देव बनते हैं, कर्म से ही हम दानव बनते हैं, कर्म से ही हम योगी भी बनते हैं, कर्म से ही मानव भी बनते हैं। ये चार प्रकार के मनुष्य हैं। तो कर्म हमारे कौन से होने चाहिए, कई लोग ये नहीं समझने के कारण कई प्रश्न करते हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम कैसे समझें ये अच्छा है ये बुरा है। किसी के लिए एक कर्म अच्छा होगा, दूसरे के लिए वही कर्म बुरा होगा। कर्म तो कर्म है, लेकिन वो अच्छा है या बुरा है इसकी कसौटी कहाँ है। तो पाप कर्म की क्या परिभाषा होगी। एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि एक किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल अभिमान है, पाप की जड़, पाप का बीज अभिमान है। अभी अभिमान कैसे ये पाप का बीज है उसको हमें समझना होगा, क्योंकि हम बहुत कुछ अच्छा कर्म भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर अभिमान के वश करते हैं वो कर्म कभी भी पुण्य कर्म नहीं बनेगा, अच्छा कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि अंदर में अभिमान भरा हुआ है। मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो, मेरी महिमा हो, मेरा मर्तबा हो, मुझे लोग पूछे, मानो इच्छाएं अगर मन में है, वो कर्म अच्छा होते हुए भी इच्छा से भरा हुआ है, वो पाप के खाते में जा सकता है, क्योंकि पाप कर्म का जो मूल है वो अभिमान है। तो पाप कर्म की क्या परिभाषा लेंगे, देह अभिमान पर आधारित नकारात्मक विचारों के वश किए गए कर्म। क्योंकि देह अभिमान जब मनुष्य को होता है तो उसी से विकार उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी, ये सारे जो विकृतियां हैं इनकी जड़ है अभिमान। और पाप के दो दरवाजे हैं, उस अभिमान के वश या तो कहेगा मैं या तो कहेगा मेरा, ये दोनों पाप के दरवाजे हैं। और जितनी बार मैं अभिमान वश कहता रहता है उतनी बार वो पाप उसका बढ़ता जाता है, बोझ उसका बढ़ता जाता है। और जितनी बार मेरा 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 करता जाता है उसका पाप और बढ़ता जाता है। ये मैं और मेरा ये पाप के दो दरवाजे हैं, क्योंकि वो अभिमान वश है मैं, और मेरा लोभ और मोह के वश है। तो जो भी कर्म नकारात्मक विचारों के आधार पर जो विकारों के वश कर्म हैं वो सब पाप के खाते में जाते हैं। अब कोई कई गुस्सा तो करना पड़ता है, ये पाप थोड़ी है, पर गुस्सा करना बिल्कुल पाप है, क्यों नहीं पाप है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति अपना तो खून सुखाता है, कहते हैं ना गुस्से वाले के घर के मटके ही सूख जाते हैं, तो अपना खून भी उसका सूख जाता है, क्योंकि क्रोध करना उसका स्वाभाविक गुण नहीं है। 10 मिनट मुश्किल से हम गुस्सा करेंगे, पर 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे तक उसका पश्चाताप करेंगे, तो ये हमारा नेचुरल गुण तो है नहीं, आत्मा का गुण तो शांति है। इसीलिए कोई सोचे ये जरूरी है, कई कहते काम वासना भी जरूरी है, हम कहते हैं कि ये भी एक विकार है। सतयुग के देवी देवताओं के अंदर काम वासना नहीं थी, इसलिए उनकी पूजा होती है, वो योग बल की रचना है, विकारों के वश की रचना नहीं है। और कलयुग की रचना ये विकार के वश रचना है, तो देखो भोग बल की रचना कितना दुखदायी बन जाती है। तो जो भी कर्म विकारों के वश होते हैं वो सब पाप के खाते में जाते हैं। अब आप बताइए कितना पाप का बोझ हम अपने सिर पर लादते जा रहे हैं, कभी सोचा है? अब उसका फल तो मिलेगा और उसका परिणाम हम देख रहे हैं, तन के रोग, मन की अशांति, धन की खींचातानी, धन होते हुए भी वो धन सुख नहीं दे रहा है, संबंधों में अनबन, रिलेशनशिप्स आर ब्रेकिंग डाउन, ये सब कर्मों का फल है। ये चारों प्रकार का जो सुख होना चाहिए, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंधों का सुख, ये सब ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि पाप कर्मों का बोझा सिर पर हम चढ़ाते जा रहे हैं। फिर कई लोग, चलो पाप कर्म कुछ किया तो समझते हैं थोड़ा दान पुण्य करो तो हमारा पुण्य हो जाएगा, तो गरीबों को दान करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, फ्री सेवा करते हैं, ये अच्छा, इसको पुण्य कर्म कहते हैं। तो पुण्य कर्म माना दान दक्षिणा, दान देते रहते हैं, जो है उनके पास वो दूसरों देते हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, ऐसे नहीं कि वो अपने आप पुण्य बन जाएगा। पुण्य कर्म करने के लिए जरूरतमंदों को स्थूल रूप से मदद करना, ये पुण्य कर्म बनता है। अगर उसको जरूरत ही नहीं है, केवल अपने नाम मान शान के लिए कर रहा है, जिसको कर रहा है उसको जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम सोचते करेंगे तो नाम होगा मेरा, तो वो पुण्य नहीं बनेगा, ये भी एक कर्म की गति है। दूसरा कर्म की गति है कि भले दान हमने किया पर हमने अपने अभिमान वश किया और वो पात्र योग्य नहीं है, दिखावा किया, तो ये भी पाप बनेगा, क्योंकि दान ऐसा होता है गुप्त माना जाता है, गुप्त दान महाकल्याण, गुप्त करो, वर्णन करने की जरूरत नहीं है, एक तो पात्र को दो, कुपात्र को नहीं, दूसरा गुप्त करो, दाया हाथ आपका दान करे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, वर्णन मत करो, अच्छा कर्म करना है और आप समझते हो ये ठीक कर्म है तो पूछो भी नहीं किसी से, ये करूं ये करूं, क्योंकि पूछेंगे तो 10 लोग 10 बातें सुनाएंगे, इसलिए नेकी कर और दरिया में डाल, पूछ पूछ नहीं, कहा जाता नेकी और पूछ पूछ, अच्छा काम है तो पूछते क्यों हो, करो, क्योंकि अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, फिर कल आप सोचेंगे अच्छा इतना की वजह इतना करूंगा, अच्छा कल करूंगा तो उसकी शक्ति और कम हो जाएगी, 1000 सोचा होगा तो 100 तक आएंगे, 50 तक आएंगे, 1 रुपए तक भी आ सकते हैं, शक्ति कम होती गई होती गई। तो इसीलिए पुण्य कर्म के लिए ये दो बातें बहुत जरूरी है, जिसको कर रहे हैं उसको आवश्यकता हो जरूर करो, उसी समय करो, सोचो नहीं, और दूसरा करते समय अभिमान मत रखो कि मैंने किया, तब वो कर्म पुण्य बनेगा, उनकी दुआएं आपको मिलेगी। और तीसरा कर्म है श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म या शुभ कर्म, शुद्ध कर्म, ये सब एक कैटेगरी में आएंगे, सकारात्मक कर्म के अंतर्गत आएंगे। और श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा अपोजिट ऑफ पाप कर्म, पाप कर्म की परिभाषा दे अभिमान के वश होके कर्म किया, और श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की स्मृति में कर्म किया, निस्वार्थ भाव से किया, फल की चिंता नहीं की, पर आत्मिक स्थिति चाहिए, मैं आत्मा आत्मा को कर रहा हूं, और ये भी परमात्मा का बच्चा है। अगर धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश ये हदों में आकर के किया ना, तो वो भी श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा, वो पुण्य कर्म भी नहीं होगा, वो तो कोई हिसाब किताब है, वो चुकतू होगा जरूर। तो आत्मिक स्थिति चाहिए और परमात्मा की याद में वो कर्म हो, ईश्वर का समझ करके हम कर रहे हैं, मेरा है ये नहीं समझ रहे, समझना हम तो ट्रस्टी है, ये समझ करके हम तन मन धन से सेवा करते हैं तो वो कर्म बहुत श्रेष्ठ बन जाता है, और उसका फल एक जन्म के लिए नहीं मिलता, जन्म जन्म के लिए वो श्रेष्ठ कर्म का फल मिलता है। अब ये भी एक कर्म की गति है। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आधार क्या है? एक तो चरित्र रूपी धरनी चाहिए। सबसे श्रेष्ठ कर्म है अपने चरित्र को सुधारना और दूसरे के चरित्र को सुधारना। इनसे और श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता है। हम दान तो बहुत करते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, भू दान, रक्त दान, नेत्र दान, बहुत दान करते हैं, इससे पुण्य बनता है। लेकिन अगर गुणों का दान करते हैं, चरित्र का दान करते हैं, मेरे कर्मों से दूसरे को प्रेरणा मिलती है और वो अपना जीवन बदल लेते हैं, इनसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म और कोई नहीं होगा। इसीलिए चरित्र रूपी धरनी तैयार करो उनकी, तब कुछ भी दान करो। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज डालो। हर कर्म परमात्मा की याद में करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। तीसरा, संयम नियम रूपी खाद डालो। जो कर्म करो वो संयम और नियम के साथ करो, मर्यादा पूर्वक करो, मर्यादा के विरुद्ध मत जाओ। और फिर अच्छे संस्कार रूपी वातावरण बनाओ। अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो भी कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे। और फिर अच्छा माहौल रूपी वायु हो, वातावरण भी श्रेष्ठ हो। जो आप यहाँ देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ कर्म हो रहे हैं, ये भी कितना सुंदर वातावरण हो रहा है। अब ये श्रेष्ठ कर्म जो हम कर रहे हैं ये कितना बड़ा पुण्य बनाएगा। कई कहते हैं ना, हम लोगों को बहुत कहते हैं, बहन जी आप तो बहुत पुण्य का काम करते हैं, इतना अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि अच्छा वातावरण है, ज्ञान का आदान प्रदान है, चरित्र का आदान प्रदान है, प्रेरणा मिलती है आत्माओं को श्रेष्ठ बनने के लिए, आधार बनता है वो। और फिर आध्यात्मिक ज्ञान रूपी धूप हो। जैसे बीज को धूप चाहिए, तो ज्ञान का बीज में वो आध्यात्मिक ज्ञान जरूर चाहिए। वो धूप अगर बीज को मिलेगी धूप, तो वो बीज कितना अंकुरित होगा, कितना अच्छा फल देगा। फिर परमात्म याद रूपी जल चाहिए। हर वक्त परमात्मा की याद उसमें चाहिए। विकारों रूपी जीवों से सुरक्षा चाहिए और धीरज रूपी इंतजार चाहिए। धीरज रखो, ऐसे नहीं मैंने भाषण किया आप कहेंगे बहन जी आपने 1.5 घंटे तक भाषण किया है, हम आपको 100 रुपया भेंट देते, हम आपको 1000 रुपया भेंट देते। हम कहते हमको नहीं चाहिए। कई हम लोगों से पूछते हैं, बहन जी आपकी तनख्वाह कितनी है? हमारे से पूछते हैं आपकी पे कितनी है, आप जो भाषण करते, क्योंकि कॉलेजेस में, स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, उनको पे मिलती है पढ़ाने की, तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? हम कहते इतना मिलता है, इतना मिलता है जो 21 जन्मों तक हम खाते रहेंगे, इतना भगवान हमको देता है। इसीलिए अभी हमको किसी से नहीं चाहिए। कोई अगर हमको भेंट भी देंगे, हम कहेंगे बाबा की भंडारी है उसमें डालो, क्योंकि हम लेके क्या करेंगे, हमको भी तो भगवान ही खिला रहा है, मनुष्य थोड़ी खिला रहा है। इसीलिए संतुष्टता और प्रसन्नता रूपी फल खाओ। कितना सुंदर जीवन है। कई हमें कहते हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। हम कहते क्यों नहीं भाग्यशाली है, इतने अच्छे वातावरण में रहते हैं, कितना सुंदर यहाँ का सब कुछ है, तो भाग्यशाली है। लेकिन फिर कई कहते हैं पर आपका त्याग बहुत जबरदस्त है, इतना आप त्याग करते हो। परंतु ये भी एक सत्य बात है कि बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। ये कर्म की गति है। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, ये जरूर समझना होगा। भाग्य तब मिले जब पहले त्याग करो। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से मिले। अंतर से त्याग हो तो भाग्य खुले। अब ये परमात्मा ने कर्म की गति बताई है। और सबसे श्रेष्ठ भाग्य किन का था? जिनके लिए कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। वो किन कर्मों से मनुष्य देव बना? ये हमारा ही स्वरूप है। मानव ही इतना ऊंचा था, पर ये कैसे बने, कौन से कर्मों से बने? इस संगम युग पर श्रेष्ठ कर्मों से ये देवता बने, जो अभी हमें परमात्मा सिखा रहे हैं। और दो युग सतयुग त्रेता तक हम इन श्रेष्ठ कर्मों का फल खाते रहेंगे, और इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हम सतयुग त्रेता में सुख पाते रहेंगे, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंधों का संपूर्ण सुख आत्मा को मिलेगा दो युग तक। सतयुग और त्रेता के बाद ये जो श्रेष्ठ कर्मों का फल समाप्त होता है, दो युग तक ये फल चलता है, और फिर द्वापर जैसे शुरू हुआ दो पुर हुए, पाप और पुण्य ये दो प्रकार के कर्म यहाँ चालू हो जाते हैं। इसलिए लोगों को बुद्धि में दो प्रकार के कर्म है, पाप और पुण्य, ये द्वापर युग से शुरू होते हैं। विकारों के वश पाप कर्म होते हैं, और जो दान पुण्य करते हैं स्थूल वो पुण्य कर्म बनते हैं, पर वो पुण्य कर्म भी तब बनते हैं जब अभिमान रहित हो, वो पुण्य तब बनते जब गुप्त हो। देखो पहले जमाने में धर्मशालाएं बनती थी, किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बनती थी, मंदिर बनते थे किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं बनते थे, जिस देवता का मंदिर है उसी का नाम होता था, कृष्ण का मंदिर, राम का मंदिर, देवी का मंदिर। अभी मंदिर है देवताओं के, पर नाम डालेंगे अपना, जैसे मंदिर है लक्ष्मी नारायण का और नाम पड़ेगा बिरला मंदिर, जैसे क्योंकि बिरला ने बनाया है तो बिरला वाले अपना नाम डाल देते हैं, पर वो बिरला की मूर्ति थोड़ी है, मूर्ति तो लक्ष्मी नारायण की है, पर नाम अपना डाल दिया, अपना नाम बनाने लिए बिरला मंदिर कह दिया। कई बार मूर्ति राधे कृष्ण की होगी और मूर्ति के नीचे लिखा रहता है फलाने ने इतना इतना दान करके ये मूर्ति बनाई, जैसे उस व्यक्ति की मूर्ति है, मूर्ति तो राधे कृष्ण की है। अब ये है अपना नाम पाने के लिए वो दान करना, तो वो कौन सा बड़ा दान हुआ। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि द्वापर युग से पाप और पुण्य ये सब चलता है। फिर भी थोड़े पहले जमाने में पुण्य अच्छे होते थे, पाप बहुत कम होता था, धीरे धीरे वो स्थिति आई है कलयुग में जो पुण्य तो नाम मात्र है, बाकी सब पुण्य भी जो दिखावे का है वो पाप के खाते में जाता है। मंदिर के नाम पर पैसा ले लेते हैं और सूची बन जाती है, और जो धनवान है वो कहेंगे मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, जितना दूसरों ने दिया मैं उनसे ज्यादा दूंगा, मेरा नाम ऊपर डालो। अब उनका नाम भी ऊपर में आ गया, सूची भी तैयार हो गई, लेकिन मंदिर तो बना ही नहीं, कहाँ गया सारा पैसा, कौन जाने कहाँ गया, सब खत्म पॉकेट में चला गया। पहले जमाने में कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ दरिया सागर में डाल दो खत्म, वो आपको फिर वापस कहाँ मिलेगा सागर में कोई चीज गई तो। धीरे धीरे नेकी कम होने लगी तो कहावत बदलती गई, नेकी कर कुएं में डाल, कुआं तो लिमिट का होता है ना, फिर वो नेकी भी कम होती गई तो नेकी कर खड्डे में डाल, खड्डा ही बहुत है नेकी के लिए। फिर धीरे धीरे ये भी कहावत बदल गई, नेकी थोड़ी और बाकी सब पॉकेट में डाल, नेकी इतनी 10% और 90% पॉकेट में। कल भी हम सुन पढ़ रहे थे अखबार में, राजीव गांधी जी ने कभी एक बार कहा होगा जब वो प्राइम मिनिस्टर था कि गवर्नमेंट कितना देती है गरीबों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, पर उनके पास केवल 15% ही पहुंचता है, ओनली 15%, बाकी 85% कहाँ जाता है, 85% सबकी जेब में। अब कितना भ्रष्टाचार है। काम वासना का अति विकराल स्वरूप, काम वासना का अति विकराल स्वरूप जो आज हम देखते हैं, रेपिज्म, बलात्कार, क्रोध का विकराल स्वरूप हत्याएं, लोभ का विकराल स्वरूप भ्रष्टाचार। पेट को कितना चाहिए, इंसान को कितना चाहिए, पेट तो एक ही है, 10 पेट तो नहीं है जो उसमें भरते जाओ, पेटियां तो बहुत है, पेटियों में भरते जाओ, पेट को तो ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा भी ज्यादा डालेंगे तो पेट तो उसको रिएक्ट करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। पर पेटियां तो जितनी भरते जाओ। तो आज जो कलयुग की स्थिति आई है, जो पाप नाम मात्र, पुण्य नाम मात्र, बाकी तो सब पाप के खाते में जा रहा है। जो हम पुण्य समझ रहे हैं पर अभिमान के वश कर रहे हैं तो वो भी पाप के खाते में जा रहा है और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य आज जो इतने पाप कर्मों से इतना दुखी हुआ है, अब अपने आप को बदले। अब शास्त्रों में कुछ और कह दिया है कि अगर हम पाप कर्म करते हैं तो हमको दूसरी योनि मिलती है। 84 लाख योनियों का वर्णन किया है। उन योनियों में हम जाते हैं अपने पाप का फल भोगने के लिए। अभी शिव परमात्मा ने एक बहुत बड़ा रेवल्यूशन दिया है कि मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरी योनि में जाएंगे फल भोगने के लिए। मनुष्य योनि में पाप किया है तो मनुष्य योनि में इसका फल मिलेगा, और जो योनियां हैं वो फल योनि नहीं है, वो भोग योनि नहीं है, न वो कर्म योनि है। उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब नहीं है क्योंकि बुद्धि नहीं है। मनुष्य को बुद्धि है और उस बुद्धि का अगर दुरुपयोग करता है तो अवश्य उसका उसको बहुत दंड मिल सकता है। अब ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि शास्त्रों में हमने ये पढ़ लिया, आप ये कर्म करेंगे तो ये योनि मिलेगी, वो कर्म करेंगे वो योनि मिलेगी, क्योंकि शास्त्रों में ये हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था आगे चल करके घोर कलयुग आएगा। तो मनुष्य पाप कर्म करने से डरे, इसीलिए ये अवश्य बातें लिखी। और अगर सचमुच और योनियां मिलनी है तो मनुष्य योनि तो कम होनी चाहिए, पॉपुलेशन इंसान के कम हो जाने चाहिए। अभी तो और योनियां जो है वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है। मनुष्य तो इतने बढ़ते जा रहे हैं जो अंत ही नहीं है। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जानवरों की संख्या तो कम होती जा रही है। शेर कम होते जा रहे हैं, चीते कम होते जा रहे हैं, हाथी कम होते जा रहे हैं, और मनुष्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर वो फल योनि है, भोग योनि है, तो वो बढ़ने चाहिए ना, क्योंकि पाप तो बहुत हो रहा है। इसीलिए ये कहना कि वो भोग योनि है ये तो अज्ञान हो गया, क्योंकि मनुष्य योनि में ही भोगना है। मनुष्य योनि में फिर भोगना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को तो डबल भोगना हो रही है, एक तो फिजिकल शारीरिक, दूसरी मानसिक। आज मानसिक बीमारियां शारीरिक बीमारियों से भी ज्यादा है। कितनी डबल भोगना इंसान आज भोग रहा है, क्योंकि बुद्धि भी तेज है। अंतर आत्मा को हम जैसे पीस रहे हैं, जैसे हम सफेद कपड़े पहनते हैं, थोड़ा सा भी दाग लगता है तो मन खाता, अरे ये दाग लग गया, दाग लग गया। तो आत्मा पर कितने दाग लगते जा रहे हैं ये पता भी नहीं चल रहा है, और वो पापों का बोझ हम सिर पर लादे घूम रहे हैं। तो कई फिर कहते कि अगर चलो हम अच्छे कर्म कर लें, हम देवता बन जाएंगे, फिर हम नीचे गिरेंगे, तो हमको इस दुनिया में आना ही नहीं है, हमको तो बस मोक्ष मिल जाए, इस संसार में आना ही नहीं, ये तो दुख धाम है, यहाँ तो दुख ही दुख है। हम कहते नहीं, ये सदा दुख की दुनिया नहीं है, ये भगवान की रचना है, ये सुख की दुनिया है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा था, सतयुग रचा था, हमने उसको नर्क बना दिया है, इसमें भगवान को दोष मत दो। परमात्मा सुख का सागर, तो उसकी रचना भी सुख स्वरूप है। तो मोक्ष की कामना जो करते हैं उनको यही आता है बुद्धि में कि दुनिया में सुख है ही नहीं। हम कहते इसी दुनिया में तो सुख था, सतयुग यही था, स्वर्ग यही था। फिर कई कहते अच्छा हम सतयुग में जाएंगे, फिर द्वापर कलयुग में आना है, फिर दुख में आना है, तो हमको सतयुग प्रेता भी नहीं चाहिए। कई फिर कहते कि हम गिरे क्यों, अगर हम देवता बन जाए तो देवता ही रहते ना, फिर क्यों नरक में आए। अब ये भी एक कर्मों की गति है कि दो युग तक ये इस समय के सत्कर्मों का फल मिलता है। इस संगम युग पर हम जो कर्म करते हैं परमात्मा की याद में, आत्मिक स्थिति में, ये दो युग तक वहां सत्युग प्रेता में कोई दुख नहीं। लेकिन जब सत्कर्मों का फल समाप्त हुआ तो द्वापुर हो जाते हैं, दो हाथ से ताली बजती है, दे अभिमान के वश हो जाते हैं। तो जो सत्कर्म हमने किए सतयुग त्रेता में उसका फल खा रहे हैं। किस रूप में? तन का सुख, मन की शांति, धन का अकीचार और संबंधों में बहुत प्रेम। तो वहां जो कर्म होते हैं सतयुग त्रेता में उनको अकर्म कहते हैं। कर्म होते हुए भी वो कर्म नहीं है क्योंकि उनके आगे फल नहीं है, वो खाने का फल है, वो खाने का कर्म है। जैसे बैंक में डिपॉजिट भी होता है फिर निकालना भी होता है, निकालते भी जाते हैं और डालते भी जाते हैं। तो संगम पर हम बैंक में डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं और दो युग तक हम खाते रहेंगे, निकालते रहेंगे, फिर वापस नहीं डालना है। उनको हम कहते अकर्म। वो कर्म जिनका अलग कोई फल नहीं बनता लेकिन वे कर्म ही फल का रूप होते हैं, खाने का कर्म, आगे जोड़ने का कर्म नहीं है। और धीरे धीरे जैसे त्रेता अंत होता है वो फल समाप्त और तो नए कर्मों का खाता चालू होता है। पर ये भी एक खेल है, अगर हम इसको खेल समझें तो इस खेल में हम खेलेंगे, कभी हार है तो कभी जीत है, दुखी नहीं होते हैं। हमेशा तो जीत नहीं होगी, हमेशा हार भी नहीं होगी। तो अभी जो हमारी स्थिति है इस समय 63 जन्मों के पाप कर्म की गठरी हमारे सिर पर है और इस स्थिति में हम वापस घर नहीं जा सकते हैं। जैसे विदेश से कोई आता है और अगर इलीगल चीज कोई लेकर आया अपने देश में तो कस्टम्स में पकड़ा जाएगा, कस्टम्स में पकड़ने के उसके पकड़ लेंगे, उसको उसकी चीज भी जब्त कर लेंगे, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, साथ साथ उसको जेल में भी डाल सकते हैं और उसका नाम भी बदनाम होगा। अब भगवान भी हमें कहते हैं ये विकार तुम्हारे साथ नहीं चल सकेंगे। आत्मा जब परम धाम से आई थी बहुत शुद्ध आई थी और उसी शुद्ध स्वरूप में वापस जाना है। तो जो 63 जन्मों का पाप कर्मों का खाता है उसको यहीं भस्म करना है। तो क्या करना होगा, क्या कैसे उनको भस्म करेंगे? तो भस्म करने के लिए परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान हमारे पाप कर्मों को खत्म करेंगे अगर हम जितना योग लगाएंगे, परमात्मा को याद करते रहेंगे उतना आत्मा पुण्य आत्मा देवात्मा श्रेष्ठ आत्मा बनती जाएंगी, पाप कर्मों का बोझा खत्म होगा। दूसरा, और आगे कोई पाप कर्म हम न करें। तो यहाँ पर कई आते हैं हमसे पूछते हैं बहन जी आपकी ये यूनिवर्सिटी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है इसकी फीस क्या है, व्हाट आर योर फीस? तो हम कहते हैं इसकी फीस है 5 खोटे पैसे, 5 खोटे पैसे। हाँ, ये तैयार हो देने के लिए यहाँ की फीस? कौन से खोटे पैसे? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 खोटे पैसे फीस के रूप में है। या तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो कुछ दान करते हैं, तो भगवान भी हमसे दान मांग रहे हैं। एक गीत है बहुत सुंदर, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत तू भर ले झोली। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी झोली भरे। किससे झोली भरनी है? शिव के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? कोई बहुत मिठाई मेवा फल वल कुछ नहीं चढ़ाते हैं। शिव के ऊपर क्या चढ़ाते? अक के फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, सब कड़वी कड़वी चीजें, तो अच्छी अच्छी दाल वो पकवान और मिठाई ये सब नहीं चढ़ाते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए हमसे? भगवान को हमारी बुराइयां चाहिए, इसलिए शिव को वो तो शंकर दिखा दिया कि उसने नीलकंठ दिखा दिया, सारा जहर सबका पी लिया। तो परमात्मा कहते अब ये विकारों का दान दो, ये यज्ञ ईश्वर ने रचा है जिसमें ये दान भगवान मांगते हैं। तो आप तीर्थ स्थान पर आए हो, तैयार हो ये दान देने के लिए? जो तैयार हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सब तैयार है तो भगवान देख रहा है, उनको बड़ी खुशी हो रही है कि इतने बच्चे तैयार हो रहे हैं दान देने के लिए। तो वर्तमान में कोई और पाप कर्म मत करो, कोई भी विकार के वश पाप कर्म मत करो। और तीसरा, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी भविष्य 21 जन्मों के लिए जमा करो। कैसे करेंगे? हर कर्म, हर वचन, हर सोच परमात्मा की याद में हो, आत्मिक स्थिति में करो, तो ये पाप कर्म का खाता यहाँ ही दग्ध हो जाएंगे। अगर ये दग्ध नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो परमात्मा कहते याद रखो मैं धर्मराज हूँ, धर्मराज की सजाएं मिलेगी। और धर्मराज की सजाओं के कारण फिर सारा पाप खत्म करने ही पड़ेंगे। अगर स्वइच्छा से अभी कर लो तो बहुत सम्मान के साथ भगवान के पास जाएंगे। अगर स्वइच्छा से ये विकार नहीं खत्म किए तो धर्मराज की सजाएं खा करके हाथ खाली जाएंगे, और फिर हाथ खाली जाके परमधाम में सो जाएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे, वो स्वर्ग का सुख नहीं ले पाएंगे। तो अभी आपके हाथ में है क्या करना है। सत्कर्मों की पूंजी जमा करके रिस्पेक्ट के साथ भगवान के घर जाना है, सजा खाए बिना ग्रीन चैनल से जाएंगे, और अगर पाप कर्मों की गठरी है तो रेड चैनल से जाएंगे, हा? और सारा खाता खुलेगा, जो गलत कर्म किए हैं उनकी सजा मिलेगी, और वो सजा खा के हाथ खाली जाना है। तो सजा खाना पसंद करेंगे या सत्कर्मों की पूंजी लेकर के सम्मान के साथ जाना चाहेंगे? क्या चाहेंगे? सम्मान के साथ जाना चाहेंगे। तो इसीलिए क्या करो, कर्म फल को परमात्मा को समर्पित कर दो और अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति करो। चिंता मत करो क्या होगा, क्या होगा, अच्छा होगा। आप अच्छा कर्म करो, आप सत्य कर्म करो, आप परमात्मा की याद में करो। दूसरे क्या कर रहे हैं वो आप नहीं सोचो, और क्या करो उसके लिए लेट गो करो। जैसे एक पक्षी अगर डाली को पकड़ के रखता है ना, वो कैसे उड़ेगा? पर डाली जिसने छोड़ी है वो तो उड़ सकता है। तो कहा जाता है छोड़ो और छूटो। अगर कि कोई ऐसी गलती हो गई, क्षमा मांगकर बदल जाओ, और कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, दुखी मत हो जाओ। सोचो ये कर्मों का हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा, आप आगे मत कर्म का हिसाब किताब बनाओ। तो छोड़ो और छूटो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेट गो एंड लेट गॉड। परमात्मा पर छोड़ दो हिसाब किताब लेने के लिए, वो जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं ना, देखना मैं भी कोई कम हूँ क्या, मैं तुमको दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों ऐसा दिखाना है? कानून को अपने हाथ में मत उठाओ, वो कानून वालों को उठाने दो। आप कोई ऐसी गलती नहीं करो जो आपके ऊपर अंगुली आए कि इसने ऐसे किया। आप भगवान पर छोड़ दो, आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करो, क्योंकि वही आत्मा के साथ जाएगा। तो क्यों आए हैं हम इस संसार में? अगर ये सदा याद रहे तो हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। हम क्यों आए हैं इस संसार में? ये सृष्टि एक रंगमंच है, और इस रंगमंच पर मैं एक अभिनेता हूँ। पर ये समझ करके हम कर्म करेंगे तो हमको बुद्धि में आएगा, मुझे अच्छे से अच्छी एक्टिंग करनी है, यहाँ रहना तो है नहीं, तो अच्छे से अच्छी एक्टिंग करूँ, पर ये मेरा पहला लक्ष्य हो। और दूसरा, मैं आत्मा जो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप हूँ, तो मुझे अपने मन वचन कर्मों से इन गुणों का ही दान करना है। हर कर्म, हर वचन, हर सोच इन गुणों से भरपूर हो, और तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। और तीसरा, हमको ये लक्ष्य हो कि हमको परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, जिसने हमको इस सृष्टि पर भेजा। तो मैं परमात्मा को प्रत्यक्ष करने लिए आया हूँ, तो मेरे कर्म ऐसे श्रेष्ठ हो जिससे परमात्मा का नाम रोशन हो। ये केवल नहीं कहो मैं तो नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा हूँ, मैं चरणों की धूल हूँ, फिर कहो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। माता पिता इतने ऊंचे हैं जिसने हमको इस संसार में भेजा है, तो हमारा हर कर्म उस पिता परमात्मा का नाम रोशन करे, यही हमारा मानव जीवन का लक्ष्य हो, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और वो ही श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी आत्मा जमा करके जाएगी और मनुष्य से देवता बनेगी, ये संसार सतयुग बन जाएगा। यही चाहते हैं ना सभी, कि ये कलयुग का दुख पसंद है, ये इसी में रहना है, कि सतयुग चाहते हैं। जो समझते कलयुग का दुख ठीक है चलेगा वो हाथ उठाएं, देखो कोई नहीं उठाता। तो जो समझते हाँ सतयुग का सुख ही आत्मा को चाहिए और उसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे वो हाथ उठाएं, देखो सब उठाएंगे। अब ये है आपके भाग्य को श्रेष्ठ बनाने की विधि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो